हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी, जो मर्द गोल्ड रिंग को अपनी उंगली में पहनता है, उसने गोया आग के जेवर को अपने ऊपर पहन लिया। गोल्ड चेन अगर वो पहनता है बल्कि जेवरात को अपने ऊपर पहनता है, तो उसने गोया आग के जेवर को अपनी बॉडी के ऊपर पहन लिया। मर्दों को सिवाय सिल्वर रिंग के, और वो भी एक स्पेसिफिक मिकदार है, उसके अलावा जेवरात पहनने की इजाजत नहीं है। बहरहाल तो मैं वाकया बयान कर रहा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को फेंक दिया और फिर दीन की बातें करने लगे। वो सहाबी बहुत ही सुकून के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातों को सुन रहे हैं। मजलिस चलती रही, वो सुनते रहे, मजलिस खत्म हो गई। जैसे ही मजलिस खत्म हुई, सब उठ गए और जाने लगे। ये सहाबी भी रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबी के दरवाजे से बाहर निकलने लगे, तो दूसरे सहाबा ने यह सोचा कि ये भूल गए कि मेरी अंगूठी वहां फेंक दी गई है। तो दूसरे सहाबा ने यह कहा उस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु से, अरे तुम भूल गए, तुम्हारी जो अंगूठी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर फेंक दी थी, वो मस्जिद के उस कोने में पड़ी हुई है, जाओ अपनी अंगूठी को ले लो और अपने घर की औरतों को दे देना। मेरी माए बहने उस सहाबी का जवाब सुनिए। वो सहाबी फरमाते हैं, जिस अंगूठी को पहनने की वजह से आज मेरे नबी को तकलीफ हुई है, जिस अंगूठी को पहनने की वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, जिस अंगूठी को पहनने की वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, उसे उठाना, घर पर ले जाना, ये तो दूर की बात है, मैं तो उस अंगूठी को देखना भी नहीं चाहता हूं। अरे जिस अंगूठी ने मेरे नबी को राज कर दिया, मुझे उस अंगूठी को भी नहीं देखना है, उस रिंग को भी नहीं देखना है, बल्कि मैं तो चाहता हूं बिलाल उसे ले ले, उसे बेचकर उसके पैसे को मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही अली मजमाइन का मिजाज था कि एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम उनके कान में पड़ गई, हुजूर का फरमान पड़ गया, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही अली मजमाइन की जिंदगियों में इनकलाब आ जाया करता था। मेरी माए बहने, वही तालीम हमारे कानों में पड़ती है, वही दीन की बात हमारे कानों में आती है, लेकिन आज हमारा हाल यह है कि जहां हमारी जिंदगी में कोई बड़ा मौका आया, हम अल्लाह को भी भूल जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूल जाते हैं। बस घर में शादी का मौका आ जाए, ऐसी ऐसी खुराफात, ऐसे ऐसे गलत काम, ऐसे ऐसे रस्म और रिवाज जो गैरों के और हिंदुओं के हैं, वो हमारे घरों में आ चुके हैं और सारे रस्म और रिवाज को निभा रहे हैं। ना नबी की तालीम की फिक्र है, ना अल्लाह के फरमान का हमें फिक्र है। शादी ब्याह का मौका आ गया, घर में कोई खुशी का मौका आ गया, घर में गमी का मौका आ गया, ऐसी बिदतें और ऐसे खुराफात हमारे घरों में शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है कि जिसको हमें अपना ओढ़ना बिछाना बनाना है, अपनी जिंदगी के अंदर उस तालीम को इख्तियार करना है। और एक बात याद रखना, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, हमारे बड़ों का कौल है, मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। एक बार हम अल्लाह के बनकर तो देखे, अल्लाह की मान कर तो देखे, फिर अल्लाह तबारक व ताला ऐसे गैब से असबाब पैदा करते हैं हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एक औरत, शोहर का इंतकाल हो गया, विडो हो गई, बेवा हो गई, घर में छोटा बच्चा है, इस औरत के कान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा, इस्लाम की तालीमात पहुंची, बस दिल ने अपील किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। बेवा औरत है, एक बच्चा है, शोहर दुनिया से चले गए हैं, खानदान वालों को पता चला, खानदान वाले मुखालफत पर आ गए, गालियां देने लगे, परेशान करने लगे कि तुमने क्यों कलमा पढ़ लिया, अपने पुराने दीन को क्यों छोड़ दिया। इतना उस औरत को इत्मीनान था अपने ईमान पर, कहा कि मैंने अल्लाह को जान लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी हो, अब मैं ये मजहब नहीं छोड़ूंगी। उनके ट्राइब वालों को पता चला, कबीले वालों को पता चला, कबीले वाले आए और आकर उसको घर, उनको घर के बाहर निकाल दिया, पूरा घर लूट लिया, माल लूट लिया, सामान लूट लिया, मां और बेटे को धक्के मारकर कबीले वालों ने भी निकाल दिया, खानदान वालों ने भी निकाल दिया। ये बिचारी औरत अपने बच्चे को लेकर, अपने बच्चे को लेकर सब कुछ लूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सीधी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अपनी पूरी दास्तान सुनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कलमा क्या मैंने पढ़ा, मुझे बर्बाद कर दिया गया, मेरा सब कुछ लूट लिया गया, बेसहारा हो चुके हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया को बिठाया, उसके बच्चे को बिठाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हिम्मत के कलिमात कहे और फिक्र और कहा कि फिक्र मत करो। सहाबाए किराम को फरमाया कि तुम में से एक सहाबी इस औरत को लेकर जाए और अपने घरों में जो औरत है उनके पास उनके रहने का इंतजाम कर दे। एक सहाबी इस काम के लिए तैयार हो गए, फरमाया मेरे घरों में औरतें हैं, वहीं पर ये रहा करेगी, हमारे यहां पर खाना पीना रहने का इंतजाम होगा, मां का इंतजाम हो गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के बारे में ये फरमाया कि इस बच्चे को हम सुफा में रख देते हैं। सुफा आपको पता है, ये एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा है। अगर आज भी आप मस्जिद नबवी में जाओ तो अभी तो मार्बल का वो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। ये वो जगह थी जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था। वहाँ बच्चे भी होते, जवान भी होते, बूढ़े भी होते, गरीब बेसहारा लोग भी होते, वहीं पर पड़े रहते थे। खाने पीने का कोई स्पेशल इंतजाम नहीं था, कोई आकर खजूर देकर जाता, कोई आकर रोटी देकर जाता, कोई आकर पानी पीने का देकर जाता, मिला तो खा लेते थे, नहीं मिला तो भूखे रहते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो सुफा था उसमें इस बच्चे को दाखिल कर दिया। अब ये बच्चा उन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही अलैहिम अजमाइन के साथ रह रहा है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, ये भी मजलिस में चला जाता है, दीन सीखता है, दीन की तालीम हासिल करता है, और दूसरे भी जो सहाबाए किराम थे उनसे दीन सीखता रहा, इस्लाम को सीखता रहा, मजहब की तालीमात मालूम करता रहा। माँ उस सहाबी के घर में पल रही है, बच्चा सुफा में पल रहा है। और अब देखिए अल्लाह का मामला हुआ ये, कुछ दिन गुजरे वो बच्चा बीमार हो गया। चुनांचे साहबाए किराम ने इलाज का इंतजाम किया, बच्चे के लिए दवाई वगैरह का निजाम किया, जो मिला बच्चे का इलाज करते गए, बच्चे की तबीयत खराब होती गई। 2-3 दिन तक वो बच्चा बीमार रहा और एक दिन अचानक बच्चे का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बच्चा गुजर गया, इंतकाल हो गया। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही अलैहिम अजमाइन ने देखा कि ये बच्चा तो दुनिया से चला गया। सहाबाए किराम ने बच्चे को गुसल दिया, कफन काटा, कफन के कपड़े पहनाए, पूरा जनाजा तैयार किया और जनाजे को उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में लेकर आए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे किसका जनाजा है, किसका इंतकाल हो गया? सहाबाए किराम ने फरमाया, याद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो माँ और बेटे आए थे, ये बच्चा बीमार हो गया, इलाज भी किया, लेकिन अल्लाह ने इसकी छोटी सी उम्र लिखी थी, बच्चे का इंतकाल हो गया है, हमने इसके जनाजे को तैयार कर दिया है। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुमने इसकी अम्मी को खबर दिया या नहीं दिया, इसकी मां को पता भी है या नहीं पता है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाईन ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नहीं नहीं, हमने उसकी अम्मी को नहीं बतलाया है और हमें हिम्मत भी नहीं हो रही है। बिचारी वो परेशान माँ है जिसका सब कुछ लूट दिया गया है, उसका घर लूट लिया गया, माल लूट लिया गया, कबीले वाले दुश्मन, खानदान वाले दुश्मन, वो बिचारी परदेसी औरत है, बेसहारा हो चुकी है। इतने जख्म उसने बर्दाश्त किए है, इतने सदमे बर्दाश्त किए हैं, अभी बिचारी नई नई ईमान लाई है, अगर उसको ये हम बतलाएंगे इसको और सदमा लग जाएगा, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा, बाद में कोई मुनासिब मौके पर उसे बतला देंगे। आप जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं 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 नहीं, ये मां उस बच्चे की वलिया है और वली की इजाजत के बगैर नमाज़े जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे सहाबा, जाओ उस माँ को जाकर बतलाओ उसके बच्चे का इंतकाल हो गया है और परमिशन लो, अगर वो मुझे परमिशन देगी उसके बाद ही मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। अब सहाबा परेशान है, कौन जाए, एक माँ को ये खबर दे के तेरा बच्चा दुनिया से चला गया। नेचुरली बात है कि एक मां को जाकर यह बात करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कुछ सहाबा तैयार हुए, उन्होंने हिम्मत की कि चलो हम जाते हैं। एक छोटी सी जमात सहाबा की निकली और उस सहाबी के घर पर गए जहां पर वो मां रहती थी, और वहां पर गए, इजाजत ली, उनके पास गए और उन सहाबा ने बड़े अच्छे अंदाज में बात को शुरू किया। कहा कि देखो बहन, हम सब अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, अल्लाह ने हमें औलाद दी है, हमारी औलाद भी अल्लाह की अमानत है, वो बादशाह है, खालिक है, मालिक है, जब चाहे हमें बुला ले, जब चाहे हमारी औलाद को बुला ले, हमें ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं है। और इन सारी बातों के बाद उन्होंने हिम्मत करके कहा कि बहन, तुम्हारा जो बच्चा सुफा में था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखता था, वो बीमार हो गया और उसी बीमारी में तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, हमने उसके जनाजे को तैयार कर दिया है, जनाजा उसका हाजिर है, हुजूर ने हमें भेजा है, अगर तुम परमिशन दे दो तो हम नमाज़े जनाजा को अदा कर दे। ये सुनना था, मेरी माए बहने, आप इमेजिन कीजिए, एक माँ समझ सकती है जिस माँ को यह खबर दी जाए तेरा बच्चा दुनिया से चला गया, उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या उसकी कैफियत होगी। जब यह खबर उस सहाबिया को दी गई है, उस सहाबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सहाबे किराम बयान करते हैं, हम कुर्बान हैं अल्लाह तबारक व ताला की इस बंदी पर कि उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं है, मातम नहीं है, वो चिल्लाई नहीं है। हाँ, उसकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे, वो रोने लगी, रोते रोते वहां से खड़ी हो गई, सीधी गई है, उस औरत ने वजू किया। वो सहाबा फरमाते, हम बैठे हुए हैं ताकि हम इजाजत मिल जाए जनाजे की नमाज की। फरमाते हैं वो औरत गई, उन्होंने वजू किया, वजू करके वापस आई, दो रकात नमाज पढ़ी है और दो रकात नमाज पढ़कर उस मां ने अपने हाथ उठाए। सहाबा बयान करते हैं वो मां हाथ उठाकर दुआ करती है, अल्लाह मैं जानती हूं मेरा बच्चा तेरी अमानत था और तुझे हक है, अपनी अमानत को तू जब चाहे तू ले सकता है, मैं इस फैसले पर राजी हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह तुझे यह भी मालूम है मेरा कबीला मेरा दुश्मन है, میرا خاندان میرا دشمن ہے, لوگوں نے مجھے میرے بچے کو گھر سے نکال دیا ہے, سب کو چھوڑ کر میں تیرے سہارے پر آئی تھی, تیرے نبی کی محبت پر آئی تھی. اے اللہ اگر آج میرے خاندان والوں کو پتا چلا, میرے قبیلے والوں کو پتا چلا میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے, میرا خاندان مذاق اڑائے گا, میرا قبیلہ مذاق اڑائے گا, لوگ کہیں گے یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کو پہچانا تھا اور اللہ نے تو اس کی اولاد بھی اس سے چھین لی. اللہ لوگ تیری مذاق اڑائیں گے, لوگ تیرے بارے میں باتیں کریں گے, لوگ تیرے نبی کے دین کی مذاق اڑائیں گے. اللہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو لیکن میرے اللہ کے بارے میں لوگ مذاق اڑائے, میرے نبی کی شریعت کے بارے میں لوگ مذاق اڑائے, لوگ اس طریقے سے اسلام کی مذاق اڑائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اے اللہ میں جانتی ہو تو ہی زندہ کرنے والا ہے, تو ہی موت دینے والا ہے, تو ہی لمبی عمر دینے والا ہے. اے اللہ آج یہ ماں کی فریاد سن لے, میرے بچے کو زندہ کر دے, میرے بچے کو زندہ کر دے. یہ رو رو کر دعائیں کر رہی ہے. وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے یہ ساری باتیں سنی ہم حیران بھی ہو گئے, ہم وہاں سے دھیرے سے اٹھ گئے کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کی خبر دے دے. وہ صحابہ فرماتے ہیں ہم وہاں سے اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. میری مائیں بہنیں سننا, ادھر یہ روانہ ہوئے حضور کے پاس آنے کے لیے, ادھر کچھ اور صحابہ جو اس بچے کے جنازے کے پاس موجود تھے وہ دوڑتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج عجب ہو گیا, عجب ہو گیا, ہم نے وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے, بچے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا تھا, اس کا جنازہ تیار کیا تھا, اچانک ہم دیکھتے ہیں جنازے میں حرکت ہونے لگے, بچے میں حرکت ہونے لگے, اور وہ بچہ جو جنازے کے تختے پر لیٹا ہوا تھا اس نے اپنے سر سے کفن کو ہٹا دیا, چہرے سے کفن کو ہٹایا, یہ جنازے کے تختے میں بیٹھ گیا اور اس کی زبان پر کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بچہ کلمہ پڑھنے لگا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا کہ وہ جلدی جاؤ ان صحابہ کو بلاؤ جو اس کی ماں کے پاس گئے تھے. اس کی ماں نے کیا جواب دیا؟ اتنے میں تو وہ صحابہ کی جماعت آئی اور انہوں نے آ کر بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کے مطابق ہم ماں کے پاس گئے, ہم نے اسے خبر سنائی, وہ نہ رو وہ نہ چلائی ہے نہ اس نے ماتم کیا ہے, وہ اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے, وضو کرتی ہے نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے یہ کہہ رہی تھی اللہ اپنی قدرت سے میرے بچے کو زندہ کر دے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے اس ماں کی دعا کو سن لیا اور اس بچے کو دوبارہ زندگی نصیب فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. میری مائیں بہنیں یہ ہے ہمارا اللہ کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. آج ہم اسے امپوسیبل سمجھتے ہیں, یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے, وہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ روکنے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. ایسا پیارا خدا, ایسا پیارا اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمارا مولا ہے اور اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں ملی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کریں گے. میری مائیں بہنیں اگر اس رمضان کی اور رمضان کی فضیلتوں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی تو ہم سے بڑا بیوقوف اور پاگل کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے دین کو سمجھے, اللہ کی نعمتوں کو سمجھے, آخرت کی تیاری کرے. ایک روایت آپ کو سناتا چلو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اپنے حجرے سے نکلے مسجد نبوی میں آئے اور فرمایا صحابہ منبر کے قریب ہو جاؤ صحابہ کرام جلدی جلدی جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہم اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ آپ کو ایک اور بات بتلاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کا ایسا استظہار تھا ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کو جب استنجا کرنا ہوتا پیشاب یا ٹوائلٹ کا تقاضا ہوتا تو جاتے پھر شرما کر واپس آ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنا ہے پیشاب کا ٹوائلٹ کا تقاضا ہے لیکن ہمیں شرم یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کپڑے کیسے کھولے اپنے ستر کو کیسے کھولے اس لیے ہمیں شرم آتی ہم واپس آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ تو بہت قدرت والا ہے اس کے لیے نہ کپڑے ستر ہے اس کے لیے نہ کپڑے آڑ بن سکتے ہیں نہ آسمان آڑ بن سکتا ہے وہ تو خالق و مالک ہے اللہ سے اس طرح نہیں شرمایا کرتے دعا پڑھ کر استنجا کرو استنجا سے فارغ ہو کر دعا کر لو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے تو بہرحال میری مائیں بہنیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اللہ سے کیسے نہیں شرماتے ہیں ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا جو امتی رات کو سونے کے لیے جائے اور سونے سے پہلے اگر وہ اپنی موت کو یاد نہیں کرتا ہے اگر وہ اپنی قبر کو یاد نہیں کرتا ہے کہ کل میں قبر میں جاؤں گی میری ہڈیاں الگ ہو جائے گی میرے چمڑی ختم ہو جائے گی میرے بدن کے ریزے ریزے ہو جائیں گے قبر کی مٹی میرے بدن کو کھا لے گی اگر کوئی میرا امتی رات کو سونے کے لیے جائے اپنی موت کو یاد نہیں کرتا ہے قبر کو یاد نہیں کرتا ہے آخرت کو یاد نہیں کرتا ہے اور بغیر اس کے سو جاتا ہے وہ اللہ سے شرم نہیں کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بے شرم سمجھا جاتا ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا کہ اللہ سے شرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں نعمتیں دی اور احسان کیا ہے ہم رات کو سونے سے پہلے شرمائے اللہ سے اور شرم یہ ہے کہ روزانہ جب لیٹ رہو اور روزانہ جب ہم اپنے بیڈ پر جائے تھوڑی دیر کے لیے سوچے اللہ آج میں سونے کے لیے جا رہی ہوں ایک دن ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گی اسی لیے ہمیں دعا بھی یہی پڑھائی گئی سونے کی دعا کیا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹی بچیاں جانتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتی بھی ہوں میں جیتی بھی ہوں تو گویا یہ سونے کے لیے جا رہے ہو اس وقت بیڈ پر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کرو قبر کو یاد کرو آخرت کو یاد کرو آخرت کی منزل کو یاد کرو اس کے بعد تم سو جاؤ اس لیے کہ اگر میرا کوئی امتی سونے سے پہلے ان چیزوں کو یاد نہیں کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں شرماتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں بے شرم ہے سوچے ہم سوچے کتنی بار ہم نے سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کیا آج تو یہ ہے کہ لیٹ نائٹ تک ٹی وی کے ساتھ میں آنکھیں چپکی ہوئی ہیں جب جھونکے آنے لگتے ہیں تو سوئچ آف کیا ریموٹ سے آف کیا اور سیدھے سو گئے نہ دعا کا خیال نہ تسبیح کا خیال بس आखिरी घड़ी तक सोने से पहले तक एक एक प्रोग्राम अपने देखे, न जाने कितने ऐसी चीजों को देखा और उसी हालत में सो गए। हमारी बच्चियां हमारे बच्चे रात को बिस्तर पर मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, ये व्हाट्सएप, वो वीडियो, ये म्यूजिक सुनते रहे, कान में ईयरफोन लगे हुए हैं। बल्कि अफसोस होता है जब ये सुनते हैं ऐसे नौजवानों से कि हम तो जब तक रात को म्यूजिक कान में नहीं सुनते हमें नींद नहीं आती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। एक ईमान वाला बच्चा, ईमान वाली बच्ची ऐसे जुमले कहे तो मोबाइल पर लगे हुए हैं, आखिरी घड़ी तक मोबाइल पर है, उसके बाद लेटे और नींद आ गई। कहां मौत की याद, कहां कब्र की याद, कहां आखिरत की फिक्र। बल्कि हाल यह है कि अगर लेटा भी है तो सोच रहा है कल क्या करूंगा, कल दुकान पर क्या करना है, कौन सा माल पहले बेचना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, जॉब पर क्या करूंगी। बस इसी में हमारा वक्त गुजरा और हम सो गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मौत को याद करके सोया करो, खबर को याद करके सोया करो, आखिरत की फिक्र करके सोया करो। तुम्हें नहीं मालूम है सुबह तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या तुम्हारी आज रात ही को शाम हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मेरी माए, मेरी बहनें, मेरी प्यारी बच्चिया, हम सबको मौत के लिए प्रिपेयर करना है। यह शैतान हमारे पीछे पड़ा है, यह तो रमजान में सरकस शयातीन कैद किए गए हैं, बाद में तो यह भी आजाद कर दिए जाएंगे। नफ्स हमारे साथ में लगा हुआ है, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है और मौत के बारे में सोचना है। हम सबको दुनिया छोड़कर जाना है। और हां, मेरी माए बहने एक बात बतलाऊं कि देखो, हमको यह तो मालूम है कि जब बुखार आता है तो क्या तकलीफ होती है, हमें यह भी मालूम है कि भूख लगती है तो क्या तकलीफ होती है, हमें यह भी मालूम है कि प्यास लगती है तो क्या तकलीफ होती है, हमें यह भी मालूम है कि हम इंजर्ड हो जाए, इंजरी हो जाए तो क्या तकलीफ होती है, ठोकर लग जाए तो क्या तकलीफ होती है। लेकिन क्या हमें यह मालूम है कि जब हमारी रूह निकलेगी उस वक्त क्या तकलीफ होगी? नहीं मालूम। आओ मैं आपको सुनाऊं, मेरी बात नहीं, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, बड़े दर्जे के सहाबी है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रूह निकलने के वक्त जो तकलीफ होगी हमें नहीं मालूम है, लेकिन अंदाजा यह है कि अगर कोई इंसान होश की हालत में हो और उसके बदन को तेज तलवार से 300 जगह से काटा जाए, 300 जगह से काटा जाए, उस वक्त जो तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ होती है जब इंसान के बदन से उसकी रूह निकलती है। अल्लाह हम सबको आसान मौत नसीब फरमाए, हमारी रूह का निकलना आसान फरमाए। मेरी माए बहने, दुनिया में एक मामूली ऑपरेशन हमारा होने वाला, एक की होल सर्जरी है, छोटी सी की होल सर्जरी होने वाली है, कितने प्रिपरेशंस होते हैं। सबसे पहले तो हमें प्री ऑपरेशन असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है और वहां पर सब कुछ चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर लेवल कैसा है, कितने फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, नेक्स्ट टू कीन कौन है वो लिखवाया जाता है। सारा प्री ऑपरेशन असेसमेंट हो गया, जब सब कुछ बराबर है उसके बाद में डेट मिलती है कि तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है। और ऑपरेशन क्या है? की होल सर्जरी। एक छोटा सा होल आपकी बॉडी में बनने वाला है और उसके लिए इतनी एहतियात की जाती है। ऑपरेशन डे पर जब हम गए तो सबसे पहले जिस जगह पर ऑपरेशन होने वाला है उसे सुन कर दिया जाता है, एनेस्थेटिक दे दिया जाता है, किसी की जगह को सुन किया जाता है, और कोई तो जनरल एनेस्थेटिक लेकर बेहोशी हो जाता है ताकि जब मेरी बॉडी में वो छोटा सा होल बनाया जाए, जो की होल बनाया जाए, तो मुझे तकलीफ ना हो, तो एनेस्थेटिक दिया जाता है। स्पेशल डॉक्टर आकर उसे या तो बेहोश करता या उसकी चमड़ी को सुन कर देता है और उसके बाद में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए आता है, कितने एहतियात के साथ में उसका ऑपरेशन हो रहा है, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसकी हार्ट बीट को चेक किया जा रहा है, ब्लड प्रेशर को चेक किया जा रहा है, और इतना उसका ख्याल किया जाता है, ड्रिप उसकी लगी हुई है, और जहां ऑपरेशन खत्म हो गया ड्रिप लगी हुई है, पेन किलर्स उसे दिए जा रहे हैं, मॉर्फिन उसकी बॉडी में उतारा जा रहा है, इतना ख्याल किया जाता है, जब बदन में एक छोटा सा होल किया जाता है और जब पेशेंट को होश आता है, इतनी मॉर्फिन उसने उसको उतारी गई है, इतने पेन किलर्स दिए गए हैं, उसके बाद भी उसे तकलीफ होती है, उसके बाद भी कितनी मुद्दत तक उसको तकलीफ होती है, पेन होता है, प्लास्टर लगाया जाता है, अगेन एंड अगेन सारे एहतियात और प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ये एक छोटी सी की होल सर्जरी की दास्तान है। मेरी माए बहने, उस वक्त हम बेहोश नहीं होंगे, होश की हालत होगी, जब रूह निकाली जाएगी होश में होंगे, चमड़ी सुन नहीं होगी। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, तेज तलवार से एक दो नहीं 300 जगह पर कट मारे जाए, उस वक्त कैसी तकलीफ होगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, उससे ज्यादा तकलीफ होगी जब हमारी रूह को बदन से निकाला जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें उसकी रजामंदी वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी माए बहने, ये अल्लाह ने इस्लाम दिया है, रमजान दिया है, रोजे की इबादत दी है, इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है, मौत का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कभी आंखें बंद हो जाएगी, हमने कोई प्रिपरेशन अपनी मौत का नहीं किया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु ने अपने, चूंकि वो खलीफाते खिलाफत के काम में बहुत बिजी रहा करते थे, तो एक आदमी को मुकर्रर किया था कि तुम हमेशा मेरे पास आना और मुझे मौत याद दिलाना, थोड़ी थोड़ी देर से कहना, अमीरुल मोमिनीन मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, ताकि मैं अपनी मौत को भूल न जाऊं। एक जमाने तक यह मामला हुआ, उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु ने उस शख्स को यह कहा, अब कल से मुझे मौत को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तो मैं दूसरी ड्यूटी देता हूं, दूसरा काम करना। तो उस सहाबी को हैरानी हुई, फरमाने लगे, हजरत अब मौत को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मौत याद दिलाता था, मुझे भी मौत याद आती थी, सबको मौत याद आती थी, अब आपको मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु ने क्या जवाब दिया, फरमाया मेरे बाल अब सफेद हो गए हैं, मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, ये बाल मुझे बार बार अपनी मौत की याद दिलाते हैं। मेरी माए बहने, आज हमारे बाल सफेद हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, हमारे रिश्तेदार दुनिया से जा रहे हो, करीबी लोगों की मौत की खबरें आ रही हो, ये रात दिन हमें अलर्ट करते हैं कि लोग जा रहे हैं, तुम्हें भी दुनिया छोड़कर जाना है, तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले मुझे मौत का प्रिपरेशन नसीब फरमाए, और हम सबको अल्लाह तबारक व ताला मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, मुबारक महीने की कदर नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, शैतान के शर से और नफ्स के सुरूर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम सबको अमली जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी माए बहने, जैसे यस लास्ट वीक मैंने आपको ईमान की हिफाजत के लिए एक बड़ा प्यारा वजीफा दिया था, आज एक और वजीफा आपको मैं पेश करूं, लेकिन वजीफे से पहले आपको एक बात बतलाऊं कि देखो, हम लोग आजकल दो चीजों की रात दिन शिकायत करते हैं। एक हमारा शिकवा होता है रोजी में बरकत नहीं है, जिसे देखो रो रहा है, जिसे देखो रो रही है, کہ بس روزی میں برکت نہیں ہوتی, اللہ دیتا ہے مقدر کی دیتا ہے, میری روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے اور جتنی روزی ہے وہ اناف نہیں ہے, بڑے سخت حالات کا سامنا ہے, ہر ایک رو رہا ہے. اللہ نے مالدار کو, غریب کو, سب کو دیا ہے لیکن ہر ایک کا یہ شکوا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے, روزی مجھے آسانی سے مل جائے تو روزی کی برکت کی ایک فکر لگی رہتی ہے. اور دوسری بات جو آج عام وطن ہم میں ہے, لوگ پریشان ہیں, کوئی کس حالت میں, کوئی کس حالت میں, کتنے ایسے بیچارے پریشان ہیں اپنی پریشانی بھی کسی کو بیان نہیں کر سکتے. تو پریشانی لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, حالات کا سامنا ہے, نہ جانے کوئی گھر سے پریشان, کوئی باہر سے پریشان, کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان. اور ایک سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس دنیا میں سب لوگ اچھے نہیں ہیں, یہ دنیا ہی ایسی ہے. یس, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد ہے, کسی کی اچھائی دیکھ نہیں سکتے, کسی کا ہنسنا انہیں پسند نہیں آتا ہے, کسی کی خوشحالی سے انہیں جلن ہوتی ہے, کوئی نعمت میں ہو تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اولاد دے دے, نیک اولاد دے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, کسی کو اچھی جاب مل جائے تو انہیں پرابلم ہوتا ہے, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد کے اچھے رشتے پیدا کر دے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, اور وہ رات دن حسد کرتے رہتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے عمل کرتے ہیں کہ بس لوگ خوش نہ رہے. تو ایسے بد نظروں کی بد نظری سے بچنے کے لیے, حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے, دنیا کی ہر پریشانی سے بچنے کے لیے اور روزی میں برکت کے لیے, یہ ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے, میرا اپنا نہیں, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتلا رہا ہوں, دو کام کرتا ہے, روزی میں برکت اور پریشانی اور ایول سے تمہیں نجات نصیب فرماتا ہے. دعا فار سسٹیننس اینڈ پروٹیکشن فرام ایول, یہ ایسی دعا ہے. یہ دعا کیسے پڑھنی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت آسان عمل ہے, صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ, ونس ان دا مارننگ ونس ان دا ایوننگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث بیان کر دو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا جو امتی صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھ لے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں دن بھر برکت دیں گے اور دن بھر اسے مصیبت اور پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیں گے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا جو امتی شام کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا, اللہ تبارک و تعالی رات میں بھی اس کی روزی میں برکت دیں گے اور رات کو بھی اسے تمام مصیبت اور بلا اور پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. حدیث میں نے پڑھ لی ہے, اب آئیے میں آپ کو وہ تسبیح بتلاؤں. بڑی آسان تسبیح ہے, صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ, ڈیلی ہمارا روٹین بن جائے. اب میں آپ کو وہ تسبیح پڑھ کر سناتا ہوں. تسبیح ہے, بہت آسان ہے, تسبیح یہ ہے, ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير. ہو گئی تسبیح, تھری سینٹنسز, اگین ریپیٹ کرتا ہوں. ما شاء الله, پہلا سینٹنس, لا حول ولا قوة الا بالله, دوسرا سینٹنس, اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر, تھرڈ سینٹنس. تو یہ تین سینٹنس ہے, صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ, اللہ تبارک و تعالی روزی میں بھی برکت دیں گے اور ہر قسم کے ایول اور پریشانی اور مصیبت سے نجات دیں گے. ایک مرتبہ میں پھر پڑھ لو, ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری مائیں بہنیں, آج جیسے میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتلایا تھا, ہمارا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ملاوی, इन चार कंट्रीज का आज फाइनल कैटरेक्ट ऑपरेशन का कलेक्शन हो रहा है। यह हमारा इस संडे का फाइनल कैटरेक्ट ऑपरेशन का कलेक्शन है। नेक्स्ट संडे को हमारे यहां पर एक और प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो इस बिना पर मेरी माओ बहनों से मैं दरखास्त करूंगा। मैंने लास्ट वीक भी आपको बतलाया था कि देखो सिर्फ और सिर्फ 50 pounds, 50 pounds आपकी जकात, आपका सदका, लिल्ला, कोई भी रकम, 50 pounds में एक गरीब की आंखों की रोशनी वापस लौट कर आ जाएगी। मेरी वो माँ, मेरा वो भाई, मेरे वो बच्चे जो बेचारे बीमार है, आंखों में मोती और कैटरेक्ट आ चुका है, अगर हमने 50 pounds अल्लाह के रास्ते में दे दिए, अल्लाह तबारक व ताला उनकी उस ऑपरेशन की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला सबब के दर्जे में उसकी आंखों की रोशनी को वापस लौटा देंगे, उसके कैटरेक्ट का इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरी माए बहने, आज अगेन हमारा कैटरेक्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एक वीक से हम कलेक्शन कर रहे हैं, ये सेकंड वीक है, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 pounds हमारे पास कैटरेक्ट ऑपरेशन के जमा हो चुके हैं। आज मैं मेरी माओ बहनों से दरखास्त करूंगा, आज कोई खाली न लौटे, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम ताउन करें, दिल खोलकर अल्लाह के रास्ते में दे, इन गरीबों के लिए हम सहारा बन जाए। तो मेरी माओ बहनों से दरखास्त करूंगा, बाहर बॉक्सेस रखे हुए हैं, अपनी रकम से ताउन करें और इन गरीबों के कैटरेक्ट ऑपरेशन का इलाज करवाए। जो माए बहने आज के बाद में देना चाहती है, वो किसी के जरिए से भी आप मुझ तक पहुंचा दे या मस्जिद के किसी जिम्मेदार तक पहुंचा दे, अल्लाह तबारक व ताला आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा में अमल करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह ताला दो संडे मुकम्मल हो गए, आइंदा दो संडे भी इसी तरह हमारे यहां पर बयान होंगे, खुद भी आए, अपनी बहनों को भी लेकर आए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का घर है, दीन की बातें हो रही है, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।